नमस्ते, मैं आराव हूँ। 99 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ऑग डिजाइन फॉर डिजाइन ऑग्स पीटर मिरहोल्स और क्रिस्टिन स्किनर की व्यावहारिक प्रबंधन पुस्तक है। इसका विषय किसी उत्पाद की डिजाइन विधि नहीं बल्कि किसी बड़ी कंपनी के भीतर एक सक्षम डिजाइन संगठन बनाना और चलाना है। पुस्तक उस स्थिति को संबोधित करती है जिसमें कंपनियां डिजाइनरों को नियुक्त तो कर लेती है पर भूमिकाओं, निर्णय अधिकारों, करियर विकास, भर्ती और अन्य विभागों से साझेदारी के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं बना पाती। लेखक डिजाइन को केवल स्क्रीन या दृश्य रूप देने वाली सेवा के बजाय ग्राहक अनुभव और व्यावसायिक रणनीति से जुड़ी क्षमता मानते हैं। पुस्तक में टीम के आकार के साथ बढ़ती जटिलता, केंद्रीकृत और एम्बेडेड ढांचे, डिजाइन ऑपरेशंस, नेतृत्व तथा पेशेवर विकास के लिए रूपरेखाएं दी गई है। इसका उद्देश्य किसी एक आदर्श ढांचे का नुस्खा देना नहीं है। इसके बजाय यह नेताओं को अपनी कंपनी की परिपक्वता, उत्पाद संरचना और सहयोगी जरूरतों के अनुसार संगठनात्मक चुनाव करने में मदद करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डिजाइन संगठन का उद्देश्य उत्पादन सहायता से रणनीतिक भागीदारी तक। पुस्तक का मूल तर्क यह है कि इन हाउस डिजाइन टीम की उपयोगिता उसके लोगों की व्यक्तिगत प्रतिभा भर से तय नहीं होती। उसकी भूमिका इस बात से तय होती है कि संगठन डिजाइन को किस काम के लिए बुलाता है और उसे निर्णयों में कब शामिल करता है। यदि डिजाइनर केवल अंतिम चरण में स्क्रीन सजाने, अनुरोध पूरे करने या इंजीनियरिंग के तैयार समाधान को रूप देने के लिए आते हैं तो टीम का प्रभाव सीमित रहेगा। इसके विपरीत, ग्राहक की जरूरत समझने, समस्या परिभाषित करने, सेवा अनुभव जोड़ने और उत्पाद प्राथमिकताओं पर चर्चा में डिजाइन की शुरुआती भागीदारी उसे रणनीतिक बनाती है। लेखक इस बदलाव को केवल डिजाइन विभाग की महत्वाकांक्षा नहीं मानते। इसके लिए उत्पाद, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अपेक्षाएं स्पष्ट करनी पड़ती है। टीम को बताना होता है कि वह किन समस्याओं की मालिक है, किन में सहयोगी है और किन अनुरोधों को नहीं लेगी। यही कारण है कि टीम चार्टर उपयोगी है। चार्टर बाहरी अपेक्षाओं और टीम की अपनी उपयोगी भूमिका के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकता है। यह दृष्टि एक व्यावहारिक चेतावनी भी देती है। रणनीतिक प्रभाव का दावा करने वाली टीम को अनुसंधान, संवाद, सुविधा प्रदान करने और परिणामों की जवाबदेही जैसी क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी। केवल पदनाम बदलने से डिजाइन की स्थिति नहीं बदलती। संगठन को ऐसी कार्यप्रणाली बनानी होती है जिसमें डिजाइन की अंतर्दृष्टि निर्णय तक पहुंच सके। दूसरा, केंद्रीकरण, एम्बेडिंग और सेंट्रलाइज्ड पार्टनरशिप के बीच संगठनात्मक चुनाव पुस्तक डिजाइन टीम की संरचना को स्थायी सिद्धांत नहीं बल्कि लाभ और हानि वाले चुनाव के रूप में देखती है। केंद्रीकृत आंतरिक सेवा मॉडल में डिजाइनर एक साझा विभाग में रहते हैं और अलग अलग उत्पाद समूहों को सहायता देते हैं। इससे पेशेवर मानक, कौशल विकास, भर्ती और डिजाइन समुदाय मजबूत हो सकते हैं। लेकिन दूरी बढ़ने पर टीम को टिकट आधारित सेवा समझे जाने, प्राथमिकताओं पर कम नियंत्रण मिलने और उत्पाद संदर्भ खोने का जोखिम रहता है। विकेंद्रीकृत या एम्बेडेड मॉडल में डिजाइनर उत्पाद या व्यावसायिक इकाइयों के साथ निकटता से काम करते हैं। उन्हें ग्राहक, तकनीकी सीमाएं और दैनिक निर्णय बेहतर समझ आते हैं। बदले में अलग टीमों के बीच अनुभव की निरंतरता, साझा मानकों और पेशेवर मार्गदर्शन को संभालना कठिन हो सकता है। हर इकाई अपने तात्कालिक लक्ष्य को प्राथमिकता देकर डिजाइन को खंडित कर सकती है। लेखक सेंट्रलाइज्ड पार्टनरशिप को इन तनावों के संभावित उत्तर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें डिजाइनर उत्पाद टीमों के करीब काम कर सकते हैं जबकि उनका प्रबंधन, करियर और अभ्यास समुदाय एक केंद्रीय डिजाइन नेतृत्व से जुड़ा रहता है। यह कोई स्वचालित समाधान नहीं है। इसकी सफलता स्पष्ट रिपोर्टिंग, सक्षम टीम लीड, साझा योजना और दोनों पक्षों की वास्तविक प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। इसलिए सही मॉडल कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो, नेतृत्व की क्षमता और सहयोग की संस्कृति से निकलता है। तीसरा, विकास के चरण और बढ़ते आकार पर डिजाइन ऑपरेशंस की अनिवार्यता। लेखक डिजाइन संगठन को एक जैसे आकार वाली इकाई नहीं मानते। वे विकास के चरणों का ढांचा देते हैं जिसमें शुरुआती जोड़ी से पूर्ण टीम, फिर जटिल संगठन और अंततः वितरित नेतृत्व तक का विस्तार शामिल है। आरंभिक छोटी टीम में अनौपचारिक संवाद काम कर सकता है। एक नेता लोगों, परियोजनाओं और भर्ती की अधिकांश जानकारी अपने दिमाग में रख सकता है। लेकिन आकार बढ़ते ही वही अनौपचारिकता, असमान नियुक्ति, कमजोर ऑनबोर्डिंग, अस्पष्ट प्राथमिकता और थके हुए प्रबंधकों में बदल सकती है। इस संदर्भ में डिजाइन ऑपरेशंस केवल प्रशासन नहीं है। इसमें भर्ती प्रक्रिया, नए लोगों का परिचय, संसाधन योजना, उपकरण, शोध या समीक्षा की व्यवस्था, पेशेवर विकास और टीम संचार जैसी गतिविधियां आती है। इन्हें स्पष्ट स्वामित्व देने से डिजाइन नेता हर छोटे समन्वय कार्य में फंसने के बजाय दिशा, संबंध और संगठनात्मक परिवर्तन पर ध्यान दे सकता है। पुस्तक टीम के लगभग 7 से 10 लोगों तक पहुंचने को औपचारिकता का एक उपयोगी संकेत मानती है। ये कठोर संख्या नहीं बल्कि जटिलता पहचानने का नियम है। लगभग 20 लोगों पर पहचान और चार्टर का प्रश्न अधिक जरूरी हो सकता है, क्योंकि टीम अक्सर दूसरों की मांगों से परिभाषित होती रही होती है। मुख्य शिक्षा यह है कि स्केलिंग का अर्थ केवल अधिक डिजाइनर रखना नहीं, स्केलिंग का अर्थ है समन्वय और गुणवत्ता बनाए रखने वाली प्रणालियां बनाना। 4. लेवल्स फ्रेमवर्क से करियर पथ और नेतृत्व क्षमता को स्पष्ट करना। पुस्तक का लेवल्स फ्रेमवर्क डिजाइन करियर को केवल वर्षों के अनुभव या सुंदर पोर्टफोलियो से मापने के विरुद्ध है। यह विभिन्न स्तरों पर मुख्य डिजाइन कौशल, व्यावहारिक क्षमताओं, जिम्मेदारियों और नेतृत्व के विस्तार को अलग करता है। शुरुआती पेशेवर के लिए शिल्प, विश्वसनीय निष्पादन और सीखने की क्षमता केंद्रीय हो सकती है। आगे बढ़ने पर व्यक्ति को अस्पष्ट समस्याओं में काम करना, सहयोगियों को प्रभावित करना, काम की गुणवत्ता को संदर्भ सहित समझाना और दूसरों की प्रगति में योगदान देना पड़ता है। इस ढांचे का महत्व निष्पक्षता और स्पष्टता में है। जब स्तरों की भाषा स्पष्ट नहीं होती तो पदोन्नति अक्सर दृश्यता, किसी प्रबंधक की व्यक्तिगत धारणा या केवल परियोजना के आकार से प्रभावित होती है। परिभाषित अपेक्षाएं कर्मचारियों को यह समझने देती है कि अगली भूमिका के लिए कौन सी क्षमता विकसित करनी है। प्रबंधक को भी प्रतिक्रिया, विकास योजना और भर्ती के लिए साझा आधार मिलता है। पुस्तक व्यक्तिगत योगदानकर्ता और प्रबंधक मार्गों के अंतर को भी महत्वपूर्ण मानती है। हर उत्कृष्ट डिजाइनर को लोगों का प्रबंधक बनाना जरूरी नहीं। प्रबंधन में कोचिंग, अवरोध हटाना, अपेक्षाएं तय करना और संगठन के भीतर टीम का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। इसीलिए वरिष्ठता का अर्थ केवल अधिक डिजाइन निर्णय लेना नहीं बल्कि प्रभाव का दायरा और जिम्मेदारी बढ़ना है। ऐसा ढांचा प्रतिभा को बनाए रखने तथा नेतृत्व की पाइपलाइन बनाने में सहायक होता है। अंत में, डिजाइन नेतृत्व को परिवर्तन प्रबंधन और लोगों के समर्थन के रूप में देखना। मेयर होल्ड्स और स्किनर के अनुसार प्रभावी डिजाइन नेतृत्व का काम टीम के हर रचनात्मक निर्णय को निर्देशित करना नहीं है। नेता को ऐसी परिस्थितियां बनानी होती है जिनमें टीम अच्छा काम कर सके और कंपनी डिजाइन की पूरी क्षमता स्वीकार करे। इसमें नीचे की ओर कोच की तरह लोगों का विकास करना, समान स्तर के साझेदारों के साथ कूटनीतिक सहयोग करना, वरिष्ठ नेतृत्व के सामने टीम का पक्ष रखना और बड़े स्तर पर व्यवस्था का वास्तुकार बनना शामिल है। पुस्तक की प्रबंधन संबंधी सलाह इसी दृष्टि से जुड़ी है। स्पष्ट अपेक्षाएं, लगातार और समय पर प्रतिक्रिया, बाधाओं को हटाना, कठिन परिस्थिति में टीम के लिए खड़ा होना तथा लोगों को केवल उत्पादन संसाधन न समझना, ये प्रबंधकीय मूल बातें हैं। खास तौर पर डिजाइन में यह जरूरी है क्योंकि काम में आलोचना, अनिश्चितता और कई हितधारकों की राय शामिल होती है। यदि नेता प्राथमिकताओं और निर्णय अधिकारों पर स्पष्टता नहीं देता तो डिजाइनर अंतहीन संशोधनों और विरोधी निर्देशों में फंस सकते हैं। नेतृत्व का बाहरी पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संगठन में डिजाइन की भूमिका बढ़ाने के लिए नेता को उत्पाद और व्यावसायिक भाषा में बात करनी पड़ती है, विश्वसनीय संबंध बनाने पड़ते हैं और परिवर्तन को चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना पड़ता है। इस तरह पुस्तक नेतृत्व को पद या कलात्मक अधिकार नहीं बल्कि लोगों, प्रक्रियाओं और संस्थागत व्यवहार को बदलने की जिम्मेदारी के रूप में रखती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक मुख्यतः उन डिजाइन प्रबंधकों, हेड ऑफ डिजाइन, उत्पाद नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपयोगी है जो इन हाउस डिजाइन क्षमता बना रहे हैं या तेजी से बढ़ती टीम की उलझनों से जूझ रहे हैं। छोटे दल के नेता भी इससे लाभ ले सकते हैं क्योंकि यह उन संकेतों को पहचानने में मदद करती है जिनके बाद अनौपचारिक ढंग पर्याप्त नहीं रहता। इंजीनियरिंग, उत्पाद या व्यवसाय पृष्ठभूमि के नेता इसे पढ़कर समझ सकते हैं कि डिजाइन टीम को केवल अनुरोध पूरा करने वाली इकाई की तरह चलाने से उसका प्रभाव क्यों सीमित होता है। इसकी व्यावहारिक शक्ति ठोस संगठनात्मक विषयों में है। यह टीम संरचना, रिपोर्टिंग, भूमिकाओं, करियर स्तरों, भर्ती, संचालन और प्रबंधन को एक ही तस्वीर में रखती है। कई नेतृत्व पुस्तकें व्यक्तिगत प्रभाव, प्रेरणा या सामान्य प्रबंधन सिद्धांतों पर केंद्रित रहती है। कई डिजाइन पुस्तकें शोध, इंटरेक्शन या दृश्य शिल्प सिखाती है। इसके विपरीत, यह पुस्तक उस संस्थागत ढांचे पर केंद्रित है जो अच्छे डिजाइन कार्य को लगातार संभव बनाता है। पुस्तक के कुछ सिद्धांत अन्य पेशों पर भी लागू हो सकते हैं और अनुभवी नेताओं को हर सलाह नई नहीं लगेगी। फिर भी इसकी विशिष्टता डिजाइन संगठनों की वास्तविक समस्याओं के लिए भाषा और रूपरेखा देने में है। यह किसी सार्वभौमिक ढांचे को थोपने के बजाय केंद्रीकरण, एम्बेडिंग, साझेदारी और विस्तार के चुनावों के परिणाम समझाती है। इसलिए इसे तैयार समाधान की सूची के बजाय निदान और निर्णय लेने की मार्गदर्शिका की तरह पढ़ना सबसे उपयोगी होगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पीटर मेरहल्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।